मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाते स्वब्दकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वांछाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशत्रये हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आज हम आपको इस श्रीमद् भागवत पुस्तक से सुनाएंगे। इसमें कुछ भी मनोधारणा नहीं है। आप सोचेंगे टेलीविजन में हमने ये देखा था, हमने वो पढ़ा था। अगर आप यथार्थ ज्ञान पाना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भागवत जिसकी कथा टेलीविजन पर आती है वो पुस्तक श्रीमद् भागवत आप इसे परचेज कर सकते हैं इस्कॉन सेक्टर 13 मंदिर से, और फिर इसे पढ़ें तो इस पढ़ने के बाद में आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज इस अध्याय पे हम चर्चा करेंगे, इसका नाम है श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो आज हमें बहुत विशेष रूप से इसे समझना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान का जन्म होता है, भगवान का जन्म क्यों होता है, और क्या उसके अंदर हमको लाभ है कि अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टेलीविजन देखते हैं रेगुलरली? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करिए। बस बाकी लोग सारे साधु बन चुके हैं। अरे बड़ा हमारा बड़ा वो रहा है यहाँ पर इन्फ्लुएंस। रेगुलर टेलीविजन आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू वॉचेस टेलीविजन? बस देखिए, टेलीविजन आप जब वॉच करते हैं तो उससे पता क्या होता है, हमारे चित्त की अशुद्धि होती है। हमारा जो हार्ट है, हृदय, ये अशुद्ध होता है और इसी के कारण हमारा मन विचलित रहता है। हम बोलते हैं आई एम इन एंजाइटी, आई एम इन डिप्रेशन, इसका कारण है टेलीविजन टेलीविजन टेलीविजन। जितना अधिक टेलीविजन, यूट्यूब, जितना अधिक इसमें हम भौतिक कार्यक्रम देखेंगे उतना हमारा क्या होगा, हृदय कलुषित होगा। जितना अधिक हम भगवान कृष्ण की कथाओं की चर्चा करेंगे उतना अधिक हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा MLM, सुना है? MLM कितने लोगों ने सुना है? MLM क्या होता है? chain of networking, people, multi-level marketing. What do you mean by MLM? असलियत MLM भगवान कृष्ण है. कैसे? M का मतलब होता है Majesty of Krishna. भगवान कृष्ण की जो मैजेस्टी है, आज हम जिस कथा की चर्चा करेंगे ये इन तीन चीजों के ऊपर दौड़ेगी, MLM के ऊपर. पहली चीज है मैजेस्टी ऑफ कृष्णा. कृष्ण किस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मैजेस्टिक समझते हैं, जो कि बहुत इज द ऑपुलेंट है, ऐश्वर्यशील भगवान, जिनके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप संसार का सारा धन इकट्ठा कर दें फिर भी भगवान के लिए वो कैसा है? तुच्छ है. हमारे लिए जो बहुत कुछ है वो भगवान के लिए क्या है? तुच्छ है. हमारे लिए बहुत कुछ है, भगवान के लिए वो तुच्छ है. मैजेस्टी ऑफ कृष्णा, एम. एल मीन्स लव ऑफ कृष्णा, भगवान का प्रेम. भगवान कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं. भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम. भगवान ने कहा सुहृद. अब ये सुहृद शब्द बहुत ही ज्यादा गहन दिमाग देने वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति दिमाग लगाएगा. भगवान ने नहीं कहा मैं मित्र हूं, भगवान ने नहीं कहा मैं बंधु हूं, भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानाम. जितने भी इस संसार में चलने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर मैं हूं सुहृद. तो मित्र जो होता है वो धोखा देता है ना. कहते फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पर होता क्या है, व्हेन यू नीड अ फ्रेंड देयर इज नो फ्रेंड, है ना. जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब तक पैसा है गांठ में तब तक यार होते हैं. लेकिन पैसा रहे नहीं पास तो फिर यार मुख से नहीं बोले. लेकिन पैसा नहीं होता है तो मित्र आपके मित्र नहीं. परिवार के लोगों को फोन करो, हेलो मुझको 20,000 की जरूरत थी, हेलो 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 आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट. 10 दिन तक फोन ही नहीं उठाएंगे, ब्लॉक कर देंगे नंबर. मित्र, इसलिए भगवान ने कहा मैं मित्र नहीं हूं, मित्र धोखा देता है. बंधु दुख देते हैं. जब व्यक्ति गुजर जाता है संसार से, उसकी अंतिम यात्रा को बंधु बांधव उठा करके शमशान में आग लगा देते हैं. उसको एक दिन भी कोई नहीं रखता. मेरे पिताजी बहुत प्यारे थे तो उनको घर में रखना चाहिए, उनके ऊपर ऐसा लेप लगाऊंगा, उनको जिंदा रखूंगा, ऐसा नहीं करते. जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा हम बाहर निकलते हैं तुरंत हमको बंधु बांधव कहां छोड़ाते हैं, शमशान घाट में जलने की. परंतु कृष्ण कैसे भगवान है जो बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, कौन है? सुहृद. सुहृद मतलब जो हृदय में रहते हैं. भगवान कहते हैं मैं हार्ट के पास सबसे क्लोजेस्ट हूं. हम दुनिया में अभी देख रहे थे, भजन सुन रहे थे जिसमें फिल्मी गाने भी तालियां बजा रहे थे, छम 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 बाजे के गाना गा रहे थे बच्चे, है ना. लेकिन हम सुहृद जो यह सबसे क्लोजेस्ट है उसको भूल जाते हैं. कृष्ण जन्माष्टमी में ये याद रहे कि ये है कृष्ण. अगर ये याद रहा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, वरना कुछ भी कर लीजिए. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु. जान पूछ करके विष खा लेगा अगर व्यक्ति बहुत समझदार होने के बाद में भी राधा कृष्ण का भजन नहीं करता. तो इसलिए समझना चाहिए भगवान सुहृद हैं. और लास्ट एम का मतलब है मिस्ट्री अबाउट कृष्णा. आप देखते हैं सीरियल्स में मिस्ट्री, अरे बड़ा अच्छा फिल्म है, बड़ी अच्छी कहानी है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिस्ट्री ट्राइंगल है, मिस्ट्री है, कृष्ण के अंदर मिस्ट्री है. इसलिए पहला एम क्या है? मैजेस्टी ऑफ कृष्णा. सेकेंड एल लव ऑफ कृष्णा. और थर्ड एम मिस्ट्री अबाउट कृष्णा. इसलिए कृष्ण कौन है? MLM. तो जब भी MLM भी कोई बोले तो याद आना चाहिए इट्स अबाउट कृष्णा, है ना. तो इसीलिए भगवान कृष्ण के लिए शास्त्रों में श्लोक कहा गया. क्या कहा जाता है? वासुदेवम सुतम देवम, बोलिए वासुदेवम सुतम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदे वंदे कृष्णम जगद्गुरु. इसलिए ऐसे गुरु से कहानी सुननी चाहिए, उसकी कहानी सुननी चाहिए जिसको पूरा जगत पूजा करता है। वंदे कृष्णा जगत गुरु, पूरे जगत के जितने भी गुरु हैं वो सारे गुरु अगर कृष्ण से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो छलिया गुरु हैं, वो छलिया ज्ञान देते हैं, फेक नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए बहुत जरूरी है उस व्यक्ति से ज्ञान लें जो कि ऑथेंटिक परंपरा में आता हो। सेवा जब हम करते हैं तो नीचे से ऊपर जाती है, और जब हमें कृपा मिलती है तो कृपा ऊपर से नीचे आती है। इसलिए अगर हमें सेवा करनी हो तो कृष्ण की सेवा ना करें, किसकी सेवा करें, जो हमारे सामने वैष्णव है उसकी सेवा करें, क्योंकि सेवा नीचे से ऊपर जाती है। आप सेवा करेंगे वैष्णव की, वैष्णव करेगा अपने गुरु की, गुरु करेंगे कृष्ण की, और फिर कृष्ण जब कृपा करेंगे तो कैसे आएगी, कृष्ण कृपा करेंगे गुरु को, गुरु कृपा करेंगे वैष्णव को, वैष्णव साधुजन आप पर कृपा करेंगे। इसलिए सेवा जाती है नीचे से ऊपर और कृपा आती है ऊपर से। इसीलिए से श्री भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको गांव में एक बनिए से मिलने जाना था, और उस बनिए के घर में गाय और साथ में भैंस जानवर आदि हुआ करते थे। अभी उसको मालूम था कि जो बनिए हैं इनके पास में बहुत सारे जानवर हैं, गाय भैंस बकरी। तो जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि उनका घर कहाँ है, क्या पूछा, क्या नहीं पूछा, उनका घर कहाँ है, क्या पूछा, बोले जी बहुत सारी गाय है उनके पास में, किसी भी गाय की पूछ पकड़ लूं, गाय जाएगी घर तक तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। ये एड्रेस ढूंढने का तरीका सही है, एड्रेस ढूंढने का तरीका ठीक है ये, क्या बोलते हैं, हाँ या ना? उन्होंने पूछ पकड़ ली गाय की, बोले गाय जाएगी उस घर तक मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, गाय की जब पूछ पकड़ी तो गाय जोर से भागने लगी, अब खड्डों के अंदर उनके दांत भी टूट गए, हड्डियां टूट गई, और गाय की पूंछ नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि एड्रेस तक जाना था। जाते रहे और जब पहुंचे तो जिस घर के बाहर पहुंचे वहां पर गार्ड थे, उन्होंने शोर मचाया, क्या, गाय का चोर आ गया, गाय का चोर आ गया, देखो गाय का चोर, उनके ऊपर और लाठियों की वर्षा हुई। तो ये सरीका सही था एड्रेस ढूंढने का, आजकल लोग ऐसे ही एड्रेस ढूंढते हैं, कृष्ण कहाँ है तो कृष्ण को नहीं ढूंढेंगे, किसी ऐसे गुरुजी की गाय पकड़ लेंगे, गुरुजी नाम की गाय पकड़ लेंगे, उनकी पूछ पकड़ लेंगे, नहीं नहीं गुरुजी कहते हम सब में भगवान है, गुरुजी कहते भगवान निराकार है, अरे कृष्ण ने तो जन्म लिया, मर गए थे, भगवान कैसे हो गए, राम के बाद आए थे, ऐसी सारी चीजें। वही है कि माँ बाप बच्चे को बोले बेटा नाक क्या होती है, तो बच्चा बोलेगा मम्मा आप बता दो, तो मम्मा बोलेगी नाक ये होती है, लेकिन टीचर बोले ढूंढो नाक क्या होती है, तो कभी ये पकड़ेगा बोला ये नाक होती है, कान पकड़ेगा बोला ये नाक होती है, फिर ये पकड़ेगा ये नाक होती है, फिर ऐसे आएगा बोला ये नाक होती है, मैडम बोलेगी हाँ ठीक है ये नाक, कैसे पकड़ा। तो लोग ऐसे कृष्ण को ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण सरलता से ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे अगर माता पिता से पूछ ले कि नाक कहाँ है, माता पिता कहेंगे ये नहीं नाक, किससे पूछना है, शास्त्र हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है। बचपन में भी गाते थे ना, वेदों का श्लोक था, क्या गाते थे वेदों में, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। वो कौन है, तुमेव माता च पिता तुमेव। कृष्ण भगवान को माता पिता की जरूरत नहीं है। जब कृष्ण खंबे से प्रकट होते हैं नरसिंह बनकर केशव धृता नरहरि रूपा, तब खंबे से आते हैं भगवान, तो कौन से माता थी, कौन से पिता थे, बिना माता पिता। इसीलिए कहा गया तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, वही कृष्ण कौन है, माता भी हैं और पिता भी, क्योंकि उनको माता की जरूरत नहीं पिता की जरूरत। सृष्टि की रचना करने के लिए कृष्ण को किसी माता की जरूरत नहीं, किसी फीमेल काउंटर पार्ट की जरूरत नहीं है, कृष्ण स्वयं शक्तिशाली आदि भगवान है जो पूरे विश्व जगत की रचना कर देते हैं, है ना। तुमेव सर्वम मम देव देवा, आप ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, तुमेव विद्या, विद्या देने वाले भी भगवान हैं, तुमेव द्रविणम, द्रविणम देने वाले भी भगवान। लेकिन हम संसार में कभी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, कभी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, कभी साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते जीवन गुजर गया, कष्ट नहीं गए, क्योंकि असली माता पिता को कभी पूजा नहीं। पूजा तो किसको पूजा, मेरे माता पिता मेरे घर में रहते हैं, ई ब्लॉक के 402 नंबर में, किसी का भी फ्लैट हो, मैंने उदाहरण लिया है। माता पिता के पास चोट लगेगी तो किसके पास जाएगा बच्चा, दौड़ करके अपने फ्लैट में जाएगा या फिर किसी में भी घुस जाएगा, 302 में मेरे चोट लगी है, फिर 405 में मेरे चोट लगी है, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्यार करके आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही देवी देवता करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, परंतु कृष्ण कौन है? तुमेव माता च पिता तुमेव। ये समझ में आ जाएगा ना, टेंशन आपकी 95% लाइफ की प्रॉब्लम चली जाएगी, 5% रह जाएगा कि करना क्या है। सिर्फ समझने से 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम समझेंगे कि कृष्ण कैसे तुमेव माता पिता तुमेव हो जाते हैं, उनकी कथा कैसे शुद्धिकरण प्रदान करती है। बताया गया है भगवान कृष्ण जब इस धराधाम में प्रकट होना चाहते थे तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, ब्रह्मा जी बहुत सारे यहां पर मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एक राक्षस है जिसका नाम है कंस। कहां था कंस नामक राक्षस? पीछे वाले लोगों को मालूम नहीं है, वो कह रहे मुनीरका में था। क्या था? कहां था कंस नामक राक्षस? मथुरा में था। मथुरा का राजा था कंस नामक राक्षस, और उस राक्षस ने ऐसा हद कर दिया था कि पूरा विश्व विजयी हो गया था। अघासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस, बकासुर और पूतना जैसे शक्तिशाली राक्षसों को उसने युद्ध में हरा करके कंस चारुण मर्दनम, चारुण जैसे जो थे ना वो मुष्टिक, ऐसे बड़े बड़े पहलवानों को हरा हरा कर, राक्षसों को हरा करके उसने एक मुट कर लिया था, बोला कि बस मैं ही हूं राजा और तुम सब मेरी प्रजा हो। इसीलिए सारे राक्षस जब कृष्ण को मारने के लिए गए उसकी एक आवाज पे चले जाते थे, ऐसा नहीं था उनके नौकर थे। इसने विश्व विजय तिरंगा फैलाया था, पूरे विश्व में कंस से शक्तिशाली और कोई भी नहीं था। तो जब ऐसी बात चली तो भगवान ने कहा, ठीक है अब समय आ गया है कि मैं इस धराधाम पृथ्वी पे प्रकट होऊंगा। तो भगवान कोई मनुष्य नहीं है, इसी भागवत में लिखा है कि मूढ़ाम ना भी जानाति, मूर्ख व्यक्ति मुझे जान नहीं पाएंगे। वो क्या समझेंगे? मनुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य बनकर के भगवान आए थे। ये जो बोलता है उसके लिए क्या आ गया? गीता कहती है मूढ़ाम न अभी जानाति, मूर्ख मुझे नहीं जान। वो क्या समझेंगे? मनुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य बन के भगवान आए थे। भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान मनुष्य की तरह प्रकट नहीं होते। अब आप जन्म लीला सुन के बता दीजिएगा, आपकी ब्रेन हिस्ट्री में, आपकी वर्ड डिक्शनरी में, आपके गूगल हिस्ट्री में कहीं किसी बच्चे ने ऐसा जन्म लिया हो तो हम बैठकर डिस्कस करेंगे भगवान कृष्ण ने कैसे जन्म लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी नक्षत्रों की रचना ऐसी कर दो जो सबसे शुभ हो, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां मंगल होता है और मेरे जाने से पहले मंगलाचरण होता है। भगवान आए, भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, तुम रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता हो, रोहिणी नक्षत्र को पैदा करो, रोहिणी नक्षत्र में मैं पैदा होऊंगा। तो कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे रोहिणी नक्षत्र कब आ रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र 3 तारीख को आ रहा है, क्योंकि 2 तारीख को जो रोहिणी नक्षत्र आ रहा है वो अधूरा है। सूर्य उगने के बाद जो रोहिणी नक्षत्र लगेगा वो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि खंडित है, जिसे छन्ना बोलते हैं, खंडित है। उसने जो व्रत रखेगा उसके व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। व्रत कब रखना चाहिए? जब सूर्य उदय से पहले ही तिथि आ जाए, और ये अष्टमी तिथि शुरू होगी 2 तारीख को और फिर वो कॉन्टिन्यूएशन में चलती रहेगी कब तक? 3 तारीख। इसलिए व्रत रखने का दिन है 3 सितंबर, 3 तारीख, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कई लोग सहूलियत से रख लेते हैं व्रत, कहते हैं 2 तारीख को संडे है, 3 को मंडे है, मंडे ऑफिस जाना है, लंच खाना है, तो क्या है 2 को व्रत कर लेंगे। तो फिर भगवान भी वैसा ही फल देते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, है ना। भगवान भी जानते हैं कि तुम व्रत अपने लिए रख रहे हो या मेरे लिए रख रहे हो। शास्त्र कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, अगर किसी को भक्ति चाहिए तो एकादशी के बराबर ही कृष्ण जन्माष्टमी का फल मिलता है, है ना। तो कई लोग तो ये कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में सैकड़ों सैकड़ों एकादशियों का फल छुपा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता और सिर्फ वो फलहार करता है, तो भगवान कृष्ण उसको क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं मुक्ति साधारण दे दूंगा, शक्ति आसानी से दे दूंगा, लेकिन मुक्ति भी दे दूंगा, शक्ति भी दे दूंगा, लेकिन भक्ति नहीं देता। भक्ति देने का मतलब होता है कृष्ण आपके नौकर बन जाते हैं, दास, है ना। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। वासुदेव और देवकी बैठे हैं कहां?
जेल के अंदर कंस ने बंद कर दिया है, अपनी बहन को बंद कर दिया है जिसको लेकर के जा रहा था, दहेज लेकर के जा रहा था छोड़ने के लिए। रास्ते में खबर आई, सभी देवी देवता सोचने लगे अगर देवकी चली गई और कहीं डिले ना हो जाए कृष्ण का जन्म लेना, चलो ऊपर से आवाज लगा दो। तो देवता जैसे आकाशवाणी होती है, ऑल इंडिया रेडियो, आपके घर में रेडियो ऑन करो और आ जाती है, ऐसे ही देवता ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, किसी देवता ने माइक ऑन कर दिया। माइक ऑन किया तो उसकी अनाउंसमेंट पूरी पृथ्वी पे सुनाई दे गई। वो कह रहे थे, अरे पता है देवकी का आठवां पुत्र कंस वध करेगा। ये बात पूरे सब लोगों ने सुन ली और कंस ने भी सुन ली। कंस ने कहा अभी देवकी को मार डालूंगा। वासुदेव ने कहा तुम्हारा देवकी से क्या लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई तो देवकी के पुत्रों से है, मैं सारे पुत्र तुमको दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये बात जब वासुदेव ने जब बोली तो कंस की समझ में आई। कंस ने कहा बात ठीक है कि अगर देवकी को क्यों मारूं, बहन के हत्या का मैं पाप क्यों अपने सिर लूं, पुत्रों को मार दूंगा। तो इस प्रकार से वासुदेव और देवकी को उन्होंने जेल में बंद कर दिया और इंतजार करने लगा कि मैं आठवां पुत्र जब आएगा उसको मारूंगा। नारद जी ने कहा आठवें पुत्र का इंतजार करेगा तो बहुत देर हो जाएगी, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए सभी देवता ललायत हैं, चाहते हैं भगवान कृष्ण आदि पुरुष भगवान जो ब्रह्मा के 1000 दिनों में, भगवान का एक दिन पता है कितना बड़ा होता है, 43,20,000 सालों का एक दिन होता है हमारा, ऐसे 1000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब उन 1000 वर्षों में कभी कभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और ये जो द्वापर युग हमारे से पहले गया इसमें कृष्ण प्रकट हुए। वो भगवान जो शाश्वत जगत के भगवान कृष्ण हैं वो प्रकट हुए और उनके प्रकट होने से पहले नारद मुनि ने कहा अरे कंस तुम किसके इंतजार में हो, क्या पता कमल की पत्तियां जो हैं उसमें कौन सी पहली है और कौन सी आठवीं है, इसका बता कौन सकता है, क्या पता कृष्ण है भगवान 8 की जगह पहले नंबर पे आ गए तो क्या होगा। वो चाहते थे नारद मुनि कि इसके पापों की संख्या बढ़े और भगवान अवतरित हो, अगर ये पाप नहीं करेगा, बच्चों को मारने का पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतरित नहीं हो। आजकल तो कंस हर घर घर के अंदर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि उसने क्या किया था, किसको मारा था, बच्चों को मारा था। आज हम देखते हैं माताएं एबॉर्शन टैबलेट्स लेती हैं कि नहीं, ये क्या हो गया, कंस हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को मार देना जो कि अभी पैदा भी नहीं हुए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी भोग अभिलाषाओं के लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मार डालते हैं। बाहर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा अल्ट्रासाउंड, लेकिन वही डॉक्टर भी जो रक्षक है वो भक्षक बन जाता है। तो इस प्रकार से कंस आज घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में कंस मौजूद है। उस कंस ने कहा ठीक है मैं 6 के 6 बच्चे मार डालूंगा, पहला बच्चा जैसे ही प्रकट हुआ मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, इस प्रकार से लगातार क्या करता रहा, मारता रहा। और भगवान के आने की सभी देवता इंतजार करने लगे कि कृष्णा कब आएंगे। आप सोचो अगर इस प्रकार का कष्ट होने लग जाए, बच्चे मरने लग जाए, तो कौन सा ऐसा माता पिता होगा भगवान को नहीं पुकारेगा, आदमी की आंखों से आंसू निकलेंगे। वही दृश्य आपको रोज स्मरण करना चाहिए कि 3 तारीख को देवकी वासुदेव इस प्रकार से एकदम हृदय उनका विदीर्ण था कि हमारे बच्चे हमारे सामने मारे जा रहे हैं और जोर जोर से क्या पुकार रहे थे, क्या पुकार रहे थे, क्या पुकार रहे थे, ऐसे तो भगवान नहीं आने वाले हैं, कैसे पुकार रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
चलिए आपको, आप इतने जोश में आपने हरे कृष्ण मंत्र किया है तो एक कथा और सुना देते हैं कि देवकी के जो ये 6 पुत्र थे ये कौन थे। हर व्यक्ति को लगता है बड़ी ही मार्मिक कथा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, ये कौन थे, क्यों हुआ, क्या कृष्ण ऐसा चाहते हैं, क्या भगवान ऐसा ही चाहते थे, ये प्रश्न उठता है। तो श्री हरिवंश पुराण एक पुराण है जो कि भागवत पुराण के अंदर से ही लिया गया एक पुराण, हरिवंश पुराण, उसके अंदर वर्णन किया गया है कि ये जो 6 बच्चे थे ये राक्षस थे पिछले जन्म में और उन राक्षसों को उनका फल दिया गया। इन 6 बच्चों के नाम भी हैं, पहले का नाम था हमसा, दूसरे का नाम था सुविकर्मा, तीसरे का नाम था कृथार, चौथे का नाम था दमन, पांचवे का नाम था रिपुमर्दन, और छठे का नाम था क्रोध हंता। ऐसे जो ये छह राक्षस थे, ये हिरण्यकश्यप जब राक्षस हुआ था उसी की संप्रदाय में, उसी के घर में, राज्य में एक राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी। कालनेमी राक्षस के ये छह पुत्र थे और इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से तपस्या करी और कहा, हे ब्रह्मा जी आप हमको शक्ति दो। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया, कहा मैं ब्रह्मा का उपासक हूं, तुम भी मेरे कॉम्पिटिशन में आ गए, ब्रह्मा के उपासक बन गए, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा पिता ही तुम्हारा वध करने वाला होगा, तुम्हारा पिता ही तुम्हारा वध करने वाला होगा। तो कालनेमी राक्षस जो था वो क्या बनता है, कंस। और जो ये बच्चे थे छह, ये छह के छह बच्चे क्या बने, देवकी के पहले छह। और अगर इसके पहले की कथा में चले और पूर्व कथा में चले तो ये कालनेमी राक्षस के पास भी क्यों राक्षस बन के आए, क्योंकि ये छह मारिचि मुनि के पुत्र थे, मुनि के पुत्र थे, भक्त थे। लेकिन इन छह लोगों ने ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सरस्वती, उस पुत्री के प्रति ब्रह्मा जी लालायित हो गए थे देख करके, ओह कितनी सुंदर मैंने इसकी रचना करी है, और उस पुत्री के पीछे पीछे जाने लगे। जब गए तो ये छह ऋषि हंस रहे थे ब्रह्मा जी देखो सृष्टि के रचना करने वाला है, देवता होकर खुद ही स्त्री का ना वासना में मुक्त फंस गया, ये लिप्त हो गया, ऐसे हंस रहे थे। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम छह के छह जाओगे, इस संसार के गर्भ को भोगोगे 9-9 महीने, अंदर मल मूत्र के पिंड में बंद हो गए, लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा तुम इस संसार के आनंद को उठाने से पहले ही मार दिया जाओ। ये दो कथाएं पीछे से चलती आ रही हैं जिसके कारण देवकी के छह पुत्रों को मारा गया। इसलिए इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या वासुदेव बता नहीं सकते थे, कृष्ण पहले ही आ जाते अपने भाइयों की रक्षा कर लेते, वो तो राक्षस थे, उनका मरना निश्चित था क्योंकि ब्रह्मा का श्राप था। भगवान अगर ब्रह्मा के श्राप को काट दे तो फिर सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी की कोई योगदान रह ही नहीं जाएगा। भगवान ने ही उनको गवर्नमेंट आर्किटेक्चर इंजीनियर बनाया है, तुम जाओ सृष्टि की रचना करो, प्रकृति के नियमों को चलाओ। और इस प्रकार से ये छह बच्चे जो हैं हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, ये हमारे जीवन के छह अनर्थ हैं। साथ में बोलिएगा कौन कौन से हैं, काम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये छह प्रकार के जो हमारे जीवन में हमें ग्रसित कर रखा है, क्रोध हम सबको आता है, लालच हम सबको सताता है, काम वासना हम सबको फंसाए रखी हुई है, ये सारे जो अनर्थ हैं ये छह के छह मर जाएंगे ना तब सातवां बच्चा पैदा होता है। सातवें पैदा हुए बलराम। जब बलराम जी प्रकट हुए तो देवकी माता के गर्भ में बलराम आए, चेहरा एकदम तेज हो गया क्योंकि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और बलराम में सिर्फ रंग का भेद है, कृष्ण श्यामल रंग के हैं और बलराम स्वर्ण गोरे रंग के हैं, और कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से बलराम जब आए तो भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया शक्ति, भगवान की दो शक्ति हैं, एक है महामाया शक्ति और एक है योग माया शक्ति। महामाया शक्ति से हमको सताते हैं, है ना, हमको सताते हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आ गई, किसकी शक्ति से आई, महामाया शक्ति, दुर्गा देवी जिसकी हम पूजा करते हैं ना, वो महामाया शक्ति। और योग माया शक्ति कौन है, योग माया शक्ति है भगवान की सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ जी के साथ बैठती हैं। ये योग माया शक्ति क्या करती है, भगवान की लीलाओं में लोगों को समझने ही नहीं देती कि क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आता है, पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता, ये योग माया शक्ति है। भगवान ने आवरण बनाया है कि काली वही लोग जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके शुद्ध हो जाएंगे वही मुझको समझ पाए, योग माया शक्ति। इस संसार के गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले लोगों को मेरी लीलाओं से दूर रखो, मुझे उनका भोग प्रसाद नहीं चाहिए, दूर रखो। ये योग माया लीलाएं करती है भगवान की, और महामाया शक्ति उन्हीं जो लोग हैं उनको सताती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक दर्द के द्वारा। कभी आपका पड़ोसी आपको दर्द देता है, कभी बच्चे दर्द देते हैं, कभी हमको आदि दैविक संसार के दुख हमको सताते हैं। तो इस प्रकार से योग माया शक्ति से बलराम जी को देव के गर्भ से निकाला गया और रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया गया। रोहिणी माता के गर्भ में जब डाला गया, क्योंकि आकर्षण करके, खींच करके उनको दूसरी गर्भ में डाला गया था, रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी है, एक तो पत्नी है कौन, देवकी, और दूसरी है रोहिणी, जो कि नंद बाबा के पास में उन्होंने छोड़ा था कि मैं जा रहा हूं दूसरी शादी करने, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मुझे लगता है इस विवाह में कोई बड़ी विघ्न आने वाली है। उनको पहले ही पता था, अगर वो रोहिणी साथ होती तो दो वो भी जेल में होती। लेकिन रोहिणी कहां थी, नंद गांव में, नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस प्रकार से जो खींच करके डाला गया तो बलराम का एक नाम पड़ गया, संकर्षण, संकर्षण, है ना। और वहां पर खबर आई कि देवकी का गर्भपात हो गया है, देवकी के गर्भ में जो बच्चा था वो मर गया है। अंदर ही कंस खुश हो गया, मेरे डर से बच्चे अब अंदर ही मरने लग गए हैं, बेवकूफ, समझ ही नहीं पा रहा था। भगवान का नाम है अभय, वो संसार उससे भयभीत होता है, भगवान क्या भयभीत होंगे, ये भगवान की बाल लीला है, भगवान लीला करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने बलराम जी को क्यों प्रकट किया, क्योंकि बलराम गुरु हैं। हमारे जीवन में जब ये छह अनर्थ कट जाते हैं तब एक वैष्णव गुरु का आगमन होता है। हम कहते हैं प्रभु जी, गुरु जी, आप हमारे जीवन में आ गए, ओहो हो, ये क्यों आए, क्योंकि अब आपने इन छह अनर्थों को मारना शुरू कर दिया। और जब गुरु आ जाएंगे जीवन में तब आठवें नंबर पे कौन आएंगे, हाँ जी, कृष्ण। सरलता से नहीं लगते, गोपाल घर में रख लिए, लड्डू गोपाल, जन्माष्टमी में ना एक बार उनके कपड़े बदलते हैं, हम लोग ना बड़ी गोपाल की सेवा करते, बड़ी सेवा करते, ये नकली सेवा है। गोपाल की सेवा रोज होती है, दिन में आठ बार होती है, आठ बार नहीं कर सकते तो तीन बार करो, तीन बार नहीं कर सकते तो दो बार करो, पर रोज खिलाओ जो आप खाते हो, ये नहीं उनको चिरौंजी दाना, अपने लिए मंचूरियन, वो ठीक नहीं है। जो आप खाते हो वो उनको खिलाओ। भगवान को क्या खिलाओगे, जो भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, भगवान वेजिटेरियन खाते हैं, उस वेजिटेरियन में भी अनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज भगवान नहीं खाते हैं, चाय भगवान नहीं पीते हैं, भैंस का दूध भगवान नहीं पीते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है गोपाल, गायों को पालने वाले, भगवान का नाम भैंस पाल नहीं है, भगवान का धाम भैंस पाल, भगवान का नाम भैंस लोक वृंदावन नहीं है, क्या है, गोलोक वृंदावन, गायों का लोक, भगवान गाय के हितैषी हैं, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद का हम प्रणाम करते हैं जो दो लोगों की रक्षा करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण हिताय चा, उनके हितैषी हैं। अगर आप ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण के कर्तव्य निभाते हैं, आप जाति से ऊपर अगर उठ जाते हैं तो कृष्ण आपके रक्षक बनने की गारंटी लेते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दूंगा और जो तुम्हारे पास है उसकी भी मैं रक्षा करूंगा। हे अर्जुन ऐलान कर दो, कौन ते है प्रति जानहि नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन बाकी संसार का विनाश होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम, जन्म भी होगा मृत्यु भी होगी, किसकी, जो भक्त नहीं बना है, लेकिन जो भक्त बन गया है भगवान उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। भगवान ने यहां रक्षा करी है, किसकी रक्षा करी, देव की और वासुदेव की रक्षा करी। कंस को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था देवकी की गर्दन दबा दूं, कंस की गर्दन दबा दूं, वसुदेव की गर्दन दबा दूं और इन दोनों को मार दूं, इनके आठवां पुत्र होने ही ना दूं। लेकिन भगवान का यहां जन्म होने वाला है, भगवान सीमिनल बर्थ से पैदा नहीं होते हैं। एक बार मैं एक बड़े हॉस्पिटल में लेक्चर दे रहा था, वहां सारे MBBS स्टूडेंट बैठे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, प्रभु जी जब कंस को मालूम था कि आठवां पुत्र जो होगा देवकी का वो उसका काल है, तो उसने देवकी और वासुदेव को अलग अलग जेल में बंद क्यों नहीं किया, अगर वो साथ में होंगे तो बच्चा तो होगा, बच्चा होगा तो फिर वो कंस कंस का काल बने। लेकिन वो ऐसा समझ नहीं पाता है, एक MBBS स्टूडेंट या एक MD स्टूडेंट, कि ये भगवान है, ये भगवान पदार्थ बुद्धि से समझने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, हृदय में बैठा हूं यहां पर। तो भगवान कैसे प्रकट हुए, वसुदेव के मन में आया कि हे कृष्ण कब आओगे इस कष्टों से हमें उबारने के लिए। भगवान जैसे उनके मन में आए तुरंत उनके मन से देवकी के मन में आए कि मेरे पति कितने दुखी हैं, हे कृष्ण आप कब आओगे। ऐसी प्रार्थना करते ही हृदय में बैठे भगवान यहां से यहां उतर गए, गर्भ में उतर, ऐसा नहीं हुआ कि वो दोनों का कोई संबंध हुआ, दोनों हनीमून पे गए और फिर उसके बाद में 9 महीने का इंतजार किया, कृष्ण कब आएंगे, बस डिलीवरी का टाइम आ गया है, अभी तो तुम्हारा है ना डिलीवरी टाइम आ गया है, ओहो बड़ी केयर करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था, नथिंग। सिर्फ सोचते ही क्षण भर में मन से मन में ट्रांसफर हुए, मन से हृदय में ट्रांसफर हुए, हृदय से गर्भ में ट्रांसफर हुए, सभी देवता उतर आए। देवकी का शरीर ऐसा दीप्तमान हो गया था जैसे आपने यहां पर आज मुनीरका को सजा रखा है, ऐसे ही देवकी चमक रही थी, कुछ हो गया है इसके शरीर में। सभी देवी देवता कह रहे थे अप्सराओं से भी अधिक सुंदर लग रही है, क्या हो गया है? सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा रोहिणी नक्षत्र हो गया है, कृष्ण आने वाले हैं। तुरंत कृष्ण ऐसे प्रकट नहीं हुए डिलीवरी के लिए दाई बुलाई या फिर कोई हॉस्पिटल की बहुत बड़ी नर्स आई कि सर्जन आए कि डीजी और डॉक्टर आया, उसने फिर कटिंग करी, इंसिजन किया, सिंटोसिनोन लगाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? प्रकट हुए भगवान गर्भ से सीधा ऐसे सामने, प्रसूति ग्रह से बाहर नहीं निकले भगवान, कैसे निकले? सामने प्रकट हुए। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा जन्म करम चमे दिव्यम एवं योवेति तत्पुतः त्यक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुनः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म बड़ा दिव्य है, और अंग्रेजी में हमने दिव्य से ही शब्द उठाया है डिवाइन। डिवाइन, डिवाइन शब्द कहां से आया? दिव्य, संस्कृत पहले आई उसके बाद हिंदी आई फिर अंग्रेजी आई, लेकिन आजकल अंग्रेजी टॉप है, उसके बाद में हिंदी है और सबसे नीचे संस्कृत, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है नीचे। सबसे ऊपर दिव्य शब्द आया, भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य। तो कैसे आपने कह दिया कि भगवान का जन्म हुआ? भगवान कोई साधारण नहीं है, प्रकट होते हैं भगवान जैसे सूर्य प्रकट होता है सुबह सुबह, और रात्रि में जब सूर्य चला जाता है तो उसको कहते हैं अप्रकट हुआ। ऐसा नहीं होता, सूरज सुबह पैदा होता है और रात को मर जाता है, इसलिए कृष्ण मरते नहीं है। कई लोग बोलते हैं कृष्ण मर गए थे ना, ये बोलने से पहले भैया तू क्यों नहीं मर गया, कृष्ण मरते नहीं है। कृष्ण ने कहा अप्रकट और प्रकट, जन्म कर्म चमे दिव्यम, डिवाइन, दिव्य है भगवान का जन्म। भगवान जब प्रकट हुए, कोई बच्चा सुना है आज तक गूगल हिस्ट्री डिक्शनरी में, चार हाथ वाला बच्चा हो जिसके चार हाथ हो, हाँ हो सकता है कोई हैंडीकैप्ड हो तो एक आध हाथ एक्स्ट्रा निकल आता है, लेकिन वो चार हाथ वाला बच्चा जो होता है वो मुकुट पहन के नहीं आता है, मुकुट पहन रखा था भगवान ने, कौस्तुभ मणि लटक रही थी, श्री वत्स लक्ष्मी जी का चिन्ह था, चार हाथों में शंख चक्र कमल गदा था। वो देवकी और वासुदेव ने कहा हे प्रभु आप आ गए हमारे पास। अभी फर्स्ट प्रवचन ऑफ कृष्णा, भगवान ने छोटा बच्चा भी पैदा होते को भी बोलते सुना है, रोते तो सुना होगा, पहला प्रवचन देवकी वासुदेव को दिया और कहा देवकी वासुदेव पहली बार नहीं आया हूं, तीसरी बार आया हूं। कहा तीसरी बार? कहा हां, जब इस सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी का जब पहला दिन हुआ तब स्वयंभू मनवंतर जब आया, मनु का नाम था स्वयंभू मनु, उस मनु में प्रिश्नी गर्भा बन करके, मैं सुतपा और प्रिश्नी तुम दोनों थे तब मैं तुम्हारे घर प्रिश्नी गर्भा बन करके आया। जब तुम लोगों ने 12,000 सालों तक दिव्य वर्षों तक तपस्या करी तो मैं प्रकट हुआ। एक दिव्य वर्ष मतलब क्या होता है? हमारा पूरा साल, एक पूरा साल 365 दिन जो गुजर जाए इसको एक दिव्य वर्ष दिव्य दिन बोलते हैं। ऐसे 365 दिन 12,000 सालों तक तपस्या करने के बाद कृष्ण प्रकट हुए प्रिश्नी और सुतपा के घर में, प्रिश्नी गर्भा बन के। उसके बाद भगवान चाक्षुष मनवंतर में प्रकट होते हैं वामन देव बनकर के, अदिति और कश्यप ऋषि के घर में, जिन्होंने 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। फिर भगवान ने कहा कि देव की वसुदेव उन दोनों योनियों में जब मैं आया तो मैं अंश रूप में आया, लेकिन अब जब मैं आया हूं मैं स्वयं आया हूं। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग युग में इंद्र के दुश्मन का वध करने के लिए मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। मेरा सृजन तभी होता है जब अधर्म बढ़ जाता है। कंस, तेरा अधर्म इतना बढ़ गया है कि आज तो छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा है। इसलिए कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले चैंट हरी डोंट वरी। क्या बोले? सब लोग नहीं बोल रहे, क्या बोले? हाँ, चैंट हरी, डोंट वरी। भगवान ने कहा मैं आ गया हूं। देव की घबरा रही थी, इसलिए नहीं घबरा रही थी कि डर के कारण घबरा रही थी, वात्सल्यता का प्रेम इतना आ गया था कि कृष्ण जो स्वयं साक्षात ब्रह्मांड नायक शिव ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो कृष्ण आज मेरे घर में प्रकट हो गया, जेल में प्रकट हो गया। हे भगवान, आप कितने करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, आप मेरे पास आ गए। इस वात्सल्य भाव से घबरा रहे थे, डर नहीं रहे थे। भगवान के आने के बाद कौन डर सकता है? भगवान के आने से डर नहीं रही थी। और फिर उन्होंने वासुदेव को कहा, वासुदेव डरो मत, अब तो मुझे यहां से लेके चलो नंदगांव और जाकर के मुझे छोड़ आओ। उन्होंने कहा मेरे पैर में तो बेड़ियां बंधी हैं, चलूंगा कैसे? कुछ तो लॉजिक लगाओ कृष्ण। कृष्ण ने कहा इससे पहले कि तू लॉजिक के बारे में सोचेगा मैंने सॉल्यूशन सोच रखा है। कहा क्या? कहा तू मुझे स्पर्श तो कर, एक बार छू तो मुझे। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को गोदी में उठाया, भी तो घबरा रहे थे चार हाथ वाले, तुरंत भगवान कौन हो गए? दो हाथ वाले अपने आदि पुरुष गोविंद रूप में भगवान जब आए तो उन्होंने उठाया और पूछा कि आप दो हाथ में क्यों नहीं प्रकट हुए? जब आप साक्षात दो हाथ वाले भगवान हो, बांसुरी बजाने वाले भगवान हो, तो आप चार हाथ में क्यों आए? उन्होंने कहा क्योंकि अगर मैं चार हाथ में नहीं आता तो इस भौतिक जगत के लोग जब मेरी कथा सुनते तो मुझे भगवान मानते ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ स्पेशल किया तब भी भगवान मान रहे। अगर मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया होता तब तो बिल्कुल ही मेरे को निकृष्ट मानते, मेरे भगवान मानते ही नहीं कभी ना, फिर जन्माष्टमी नहीं बनाते। आप देखिए राम जी का जब जन्म होता है तो लिखा जाता है राम नवमी, सीता जी का जब जन्म होता है लिखा जाता है सीता नवमी, वामन देव का जब जन्म होता है कहते हैं वामन पूर्णिमा, नरसिंह भगवान का जन्म होता है कहते नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है तो खाली लिख देते हैं जन्माष्टमी। कितना टिपिकल है, क्योंकि पता है अजन्मा का कभी जन्म नहीं होता, तो इसीलिए इनको टाइटल बिल्कुल सूट करता है जन्माष्टमी। जन्म तो उसका होता है ना जो कि कभी मरता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मर जाते हैं तो हमारा जन्म का है बात का, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। भगवान दिव्य रूप से जन्म लेते इसलिए उनको टाइटल मिला जन्माष्टमी। पूछना नहीं पड़ता कौन से भगवान की जन्माष्टमी, सीता जी प्रकट हो दुर्गा जी की, पूछता है बाल सबको मालूम है एक ही का जन्म हुआ है आज तक, किसका? कृष्ण का। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है, हीरो है, नायका नाम, नायकों में श्रेष्ठामस्मि, नायकों में सबसे श्रेष्ठ हूं भगवान कहते हैं। जितने भी हीरो हैं ये खल नायक हैं। राजेश खन्ना कुछ समय चलते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं, ऋतिक रोशन की चार पिक्चर फ्लॉप होती हैं बच्चे टिकट फाड़ देते हैं, घर से पोस्टर उखाड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में भी विराजमान थे और आज 2018 में भी मुनिरका में विराजमान है ना, ऐसे भगवान है, स्पेशल है, हीरो, क्योंकि ये ब्रह्मांड नायक भगवान है। ऐसे भगवान ने कहा छुओ तो, जैसे ही छुआ तुरंत बेड़ियां हट गईं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? भगवान कहते हैं जैसे ही आप मुझे स्पर्श करोगे तुरंत क्या हो जाएगा, इस संसार के भव बंधन से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, है ना। और भगवान ने कहा कि तुम मुक्त होकर के अब मुझे क्या करो, लेकर के चलो यहां से लेकर के कहां जाओ, नंदगांव। तो इस प्रकार से जिस दिन आप भगवान कृष्ण को स्पर्श करेंगे, जैसे ही स्पर्श करेंगे उनके नाम को, हरे कृष्ण बोलेंगे ना, तुरंत आपके जीवन की भी बेड़ियां कट जाएंगी, वो दुख जिन्होंने आपको घेर रखा है वो हट जाएंगे। हटते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास नहीं। वसुदेव जी ने जैसे ही छुआ बेड़ियां हट गए। और क्या हुआ? बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ में वर्णन किया गया है भगवान के जेल के बारे में। कहते हैं कि भगवान ने नवजात शिशु को सुति ग्रह, प्रसूति ग्रह को भागवत में सुति ग्रह लिखा है, ले जाने के लिए उसी क्षण जैसे ही स्पर्श किया और फिर क्या होने लगा, भागवत में वर्णन किया गया है, ताम कृष्ण वहा वासुदेव आगते स्वयं वरवयंतम यथा तमोरवे ववर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः शेषो अनवग द्वारा निवारण फने। क्या कहा गया? ताम कृष्ण वहे वासुदेव आगते, जैसे ही वासुदेव ने उनको उठाया क्या हो गया? कहते हैं स्वयं वर्वेंतम यथा तम रवे वर्वशे, वर्वशे मतलब वर्षा होने लग गई, बहुत जोर की पानी, इतनी जोर की बारिश हुई। क्यों हुई बारिश? बारिश इसलिए हुई क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर ये मुझको लेकर के जाएंगे और किसी ने देख लिया, कंस को इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, इनको बड़ी तकलीफ होगी। भगवान कितनी केयरिंग एटीट्यूड वाले हैं, बहुत ही केयर करते हैं अपने भक्तों की। भगवान ने कहा इतनी बारिश कर दो सब लोग अपने घर को खिड़कियों को क्या कर लें, बारिश आती तो आप लोग क्या करते हो, खिड़की दरवाजे बंद करते हो, बच्चों को कहते हो लाइट ऑफ करके सो जाओ, है ना, लाइट चली जाएगी। सभी लोगों ने अपने अपने बच्चे अपने अपने घर में सब सो गए थे। और फिर वसुदेव जी ने कृष्ण को गोदी में उठाया, टोकरी में नहीं उठाया, किस में उठाया, टोकरी का जो टॉपिक है वो गलत है। अब पुरुष नहीं उठता वसुदेव जी के बाद टोकरी कहां से आई, है ना, एक टोकरी गलत सिस्टम लगा दिया लोगों ने, सब्जी बेचने थोड़ी जा रहे थे। वो कृष्ण को गोदी में उठाए और गोदी में उठाने के बाद कहते हैं वह वर्ष परजन्य, परजन्य मतलब बादल, बादल डुबडुबी बजाने लग गए, डुब 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 डुब। क्यों बजा रहे थे, बादल कह रहे थे समुद्र से, हे समुद्र तुम्हारे नाम से तो भगवान का नाम जुड़ा हुआ था करुणा सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, करुणा सिंधु, पर अब मेरा नाम भी भगवान के रंग से जुड़ने वाला है, क्या नाम पढ़ने वाला है, घन श्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब कृष्ण, घन श्याम। तो इसलिए बादल बड़ा खुश हो रहा था, ववर्ष पर्जन्य उपशृंगरजतः, गर्जित हो रहा था बहुत जोर जोर से। और तब क्या हुआ, बारिश हो रही थी, गरज रहे थे, और तुरंत यमुना नदी से नंदगांव की ओर महावन के अंदर मथुरा से कृष्ण को जब ले जा रहे थे वासुदेव, इतनी जोर की बारिश हो रही थी लेकिन बड़े ही ऑटोमेटिक सिस्टम था, एक भी बूंद वासुदेव जी के सिर पे नहीं गिर रही थी, ऑटोमेटिक छतरी। क्यों, कौन था, यहां लिखा है शेष अनवगतहा वरी निवार्यम फणे, फणे मतलब अपना फन शेष नाग जी ने ऊपर लगा दिया था, जो बलराम है, जो कि रोहिणी के गर्भ में भी पैदा हो चुके हैं, साक्षात शेष बनकर पैदा हुए, कृष्ण के ऊपर छतरी कर ली, बोले वैसे तो पानी नहीं गिर रहा है लेकिन कभी एक आध बूंद गिर गई तो खामखा मेरी सेवा से मुझे निकाल दिया जाएगा, इसलिए शेष नाग ने ऊपर। अभी यमुना नदी ऊपर उछलने लगी, कहती है कालिंदी नाम की यमुना भगवान की 8 पटरानियां हैं, है ना, 16108, है ना, 8 पटरानियां कौन है, उन 8 पटरानियों में से एक तो है रुक्मिणी, एक है सत्यभामा, तीसरी कौन है, कौन है, हाँ जी, कालिंदी भगवान की पटरानी है यमुना, चौथी कौन है, कौन है, अरे आपको भगवान की पटरानियां भी नहीं पता, कैसे लोग हैं, बताइए बताइए, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती, कालिंदी, सत्या, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियों ने क्या किया, वहां पर बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया कि अब हमें भी मौका मिलेगा कृष्ण के साथ लीला करने का। तुरंत कालिंदी ने कहा मेरे पति आ गए हैं, पांव छूंगी, पत्नी का कर्तव्य है, कलयुग वाली पत्नी नहीं थी कि गला छूंगी, कलयुग वाली भी छूती है, वो मथुरा वाली छू लेती है, वहां और नहीं छूती, दिल्ली वाली नहीं छूती। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी पत्नी पति के क्या करूंगी, चरण स्पर्श करूंगी, गोदी में ले रखा था, पांव ऐसे ऊपर की तरफ थे, वसुदेव जी बचा रहे थे और यमुना कह रही थी नहीं छूंगी, और ऊपर और ऊपर, जब बिल्कुल गर्दन तक पानी आ गया तो वसुदेव जी हार गए, उन्होंने कृष्ण को जैसे ऐसे किया, कृष्ण ने अपने पांव नीचे लटका दिए, पांव का स्पर्श पाते ही कालिंदी ने पूरा रास्ता बना दिया, बोली बीच में से होकर के चले जाओ, चारों तरफ उफान है पानी का लेकिन बीच में वसुदेव जा रहे हैं, कहा मेरा काम हो गया, मेरा इतना ही काम था, पति के पांव को स्पर्श करना था। स्पर्श करते ही वसुदेव जी पहुंचे और जाकर के नंद बाबा के घर में, नंद भवन में 2 बच्चों ने जन्म लिया था, एक तो थे कौन, योग माया, और दूसरे थे कौन, कृष्ण। आप कहेंगे कृष्ण, पर कृष्ण तो देवकी के आए थे, यही यहां पर वर्णन किया गया है। देखिए भागवत से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए ताकि आपको और ऑथेंटिक लगे, ये ना लगे प्रभु जी कोई बातें बना के चले गए। यहां लिखा है कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। एक ही समय में देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 47 श्लोक, 47वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। ना कहा गया है कि एक ही समय में देवकी और वसुदेव के घर में, वहां आए थे चतुर्भुज रूप में और यहां आए थे 2 भुज रूप में, क्योंकि कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म है 2 भुज रूप। अब ये पहुंचे, वसुदेव जी को दिखा ही नहीं कि यहां पर दो बच्चे हैं, उनको क्या दिखा? एक लड़की लेटी है योग माया, योग माया ने उनकी आंखों पे आवरण चढ़ा दिया, कहा एक ही पुत्री है। उन्होंने अपना पुत्र रखा कृष्ण और वहां से पुत्री को उठाया। और यहाँ पर जो कृष्ण चतुर्भुज रूप वाले जन्म लिए थे, जिनका नाम है वासुदेव कृष्ण, वो यशोदा कृष्ण के अंदर क्या हो गए? मर्ज हो गए। इसीलिए ये जो कृष्ण थे दो की जगह अब क्या हो गए? एक हो गए। और 11 साल 56 दिन के बाद जब कृष्ण को अक्रूर जी लेने के लिए आए और अपने साथ लेकर मथुरा जा रहे थे, तो देवकी और वसुदेव को बड़ा ही इंतजार था मेरे कृष्ण कब आएंगे। तो एक कृष्ण तो चले गए थे कहां? मथुरा। वो कौन से कृष्ण चले गए थे? वही कृष्ण जो मथुरा से आए थे, जिनका नाम है वासुदेव कृष्ण। परंतु यशोदा कृष्ण जो थे, वृंदावन वासी कृष्ण जो थे, नंद नंदन कृष्ण जो थे, उन्होंने भागवत में लिखा है, वृंदावनम परित्याजम एकम पदम ना गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके मैं एक कदम भी नहीं जाता हूं, इसलिए भगवान वृंदावन को त्याग करके कभी वहां से नहीं गए। जो ये कथा सुनते हैं ना, भगवान द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, कभी गोपियों के पास नहीं आए, वो कौन से कृष्ण गए थे? वासुदेव कृष्ण, जो चतुर्भुज रूप वाले विष्णु के रूप में अवतरित हुए थे। इस प्रकार से ये लीला बहुत सुंदर है कि जैसे ही भगवान ने उस योग माया पुत्री को उठाया, वो योग माया पुत्री वापिस आई, और आने के बाद में आप देखेंगे जैसे ही माया का स्पर्श आप करोगे क्या होगा? वापिस से बारिश बंद हो गई, लोग झांक कर देखने लगे, पहरेदार जाग गए, और साथ में बेड़ियों का बंधन दोबारा से आ गया। इस संसार की बेड़ियों का बंधन आपको तब तक घेर के रखेगा जब तक आप कृष्ण का स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज ही कृष्ण का क्या करें? स्पर्श करें, उनके नाम का स्पर्श करें, ताकि इस भव बंधन के कारागार से हम भी मुक्त हों और हमारे बीच में कौन प्रकट हो जाए? कृष्ण आ जाए। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ाम मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अवाजन्तो अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ाम, लेकिन इतना सुनने के बाद भी अवजानन्ति माम मूढ़ाम। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, जो मेहनत तो करेगा और सोचेगा मेहनत करके पैसा मिलता है, वो ये भूल जाएगा कि कृष्ण के लिए कार्य करो, ऑटोमेटिकली सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर मैं संतुष्ट होता हूं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। अगर ये बात हम समझ जाएंगे तो हम कृष्ण जन्माष्टमी को ऐसे बनाएंगे कि सुबह 4 बजे उठेंगे और 4:30 बजे मंगल आरती में इस्कॉन सेक्टर 13 पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं? आप लोग तो उदास हो गए, कैसा था? हाँ जी, माता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, माता जी के लिए ताली बजाए। माता जी ने कहा है चंद्रमा पूरा था। हरि बोल। क्यों था? अष्टमी के दिन तो आधा चंद्रमा होना चाहिए, पूर्णमासी को पूरा होना चाहिए, लेकिन चंद्रमा इस बात से प्रसन्न था कि जब भगवान राम बनकर के आए थे तो सूरज को उन्होंने नाम दिया सूर्यवंशी श्री राम, तो चंद्रमा उदास हो गया, बोला अरे प्रभु आप प्रकट हो गए इस रघुवंश में, सूर्यवंश में, मेरे वंश का कब उद्धार करोगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में स्वयं प्रकट होऊंगा और तेरे इस वंश का उद्धार करूंगा। इसीलिए चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण जो कहा जाता है, भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए। तो भगवान के प्रकट हुए ही अष्टमी का आधा चंद्रमा खिलखिला के हंसने लगा, है ना? जब खिलखिला के हंसा तो कैसा लग रहा था? पूर्ण चंद्रमा, पूरा चंद्रमा लग रहा था। हरी हरी। ठीक है, अभी और प्रश्न पूछे जाए।